दिन भर तारीख 19 अप्रैल दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के रिहायशी इलाके में हुआ जोरदार धमाका, कम से कम 30 मौतें। हमले की जिम्मेदारी ली तालिबान ने। इशरत जहां मामले में पी चिदम्बरम पर आरोप कि उन्होंने बतौर गृह मंत्री हलफनामे पर हस्ताक्षर कर उसे लश्कर का चरमपंथी बताया था। सुनाएंगे आपको सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के झांसी जिले के बोडा गांव का हाल।
साइकिलों से जाते हैं, डिब्बों से भर के लाते हैं, जैसे ये टंगा है।
सारी औरतें 2 बजे रास्ते भरती हैं, वो गांव में कहीं भी पानी है नहीं, गांव के बाहर पानी है। जो बच्चे हैं अब वो बेचारे पूरे दिन भरते हैं पानी, मतलब अभी स्कूल जाना भी उनका बंद हो गया।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मारे गए अधिकतर लोग आम नागरिक हैं। एक हमलावर ने विस्फोटकों से लदी कार में खुद को उड़ा लिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। इसके बाद कुछ हमलावरों ने सरकारी इमारत में घुसकर गोलीबारी की। केंद्रीय काबुल में स्थित इस इमारत का इस्तेमाल अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा दल करते हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने बड़े हमले करने का ऐलान किया था। जर्मनी में इस्लाम विरोधी आंदोलन पेगिडा के नेता पर नस्लीय नफरत फैलाने के आरोपों में मुकदमा शुरू हुआ है। लुत्ज बाखमान पर आरोप है कि उन्होंने 2 साल पहले अपने फेसबुक पर की गई एक पोस्ट में प्रवासियों को जानवर, गंदगी और मैल कहा था। बाखमान ने आरोप नकार दिए हैं। ड्रेसडेन में अदालत के बाहर पेगिडा समर्थक और विरोधी प्रदर्शनकारी जुटे रहे। अदालत के बाहर अभियोजक लॉरेंस हासा ने कहा कि दोष सिद्ध होने पर बाखमान को 5 साल तक की कैद हो सकती है। उन्होंने कहा, ड्रेसडेन के अभियोजकों ने इन पर भड़काने के आरोप लगाए हैं। हमारा आरोप है कि बचाव पक्ष ने प्रवासियों और शरण मांगने वालों की फेसबुक पर की गई टिप्पणी में बेइज्जती की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शरणार्थियों को जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। पी चिदम्बरम पर आरोप लगे हैं कि बतौर गृह मंत्री उन्होंने इशरत जहां को लेकर 2 अलग अलग हलफनामों पर दस्तखत किए, जिनमें से एक में उसे चरमपंथी बताया गया और दूसरे में नहीं। भाजपा का आरोप है कि चिदम्बरम को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ये मुद्दा उठाकर फर्जी मुठभेड़ मामले को दबाना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मोजाम्बिक के लिए अनुदान पर रोक लगा दी है। ऐसा सरकार के 1 अरब से ज्यादा के कर्ज के बारे में जानकारी छुपाने के बाद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अधिकारी के मुताबिक अन्य दानदाता भी मदद पर रोक लगा सकते हैं। इससे मोजाम्बिक पर भारी दबाव आ जाएगा। इस अफ्रीकी देश का सालाना बजट का चौथाई हिस्सा विदेशी मदद पर निर्भर है। मोजाम्बिक पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के व्यवहार पर नजर रखने के लिए करीब 7,000 खुफिया पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात सामने आने पर सोशल मीडिया और मुख्यधारा के अखबारों में चिंता जाहिर की गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक जोरदार धमाके में अब तक कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है और 329 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 5 स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। आज हुआ धमाका रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठानों के पास एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिसमें विशेष सुरक्षा दस्ता रहता है। ये दस्ता अफगानिस्तान के सबसे वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा में लगा रहता है। जब ये हमला हुआ तब घटनास्थल के पास में ही अहमद नाविद काम कर रहे थे। अहमद नाविद कह रहे थे, जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पूरे इलाके में धूल फैल गई, वहाँ क्या हो रहा था मुझे दिखना बंद हो गया और बाद में मैंने देखा कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में एक नागरिक अब्दुल सलाम घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। अब्दुल सलाम कह रहे थे खिड़कियां और कांच टूट कर लोगों पर गिरने लगे। जिस बाजार में मैं मौजूद था वहां कई लोग घायल हुए हैं। वहां भगदड़ जैसी स्थिति थी और बहुत ज्यादा तनाव था। हमले में घायल अब्दुल सलाम के शब्द। हमारे सहयोगी अमर शर्मा ने काबुल में बीबीसी पश्तोश सेवा के संवाददाता सईद अनवर से संपर्क साधा और घटना का पूरा ब्यौरा मांगा।
आज ये खुदकुश हमला सुबह 9 बजे काबुल के एक मरकजी इलाका पुली महमूद खान में हुआ, जहां एला सिक्योरिटी एहलकार के सिक्योरिटी यूनिट का मरकज था। इस मरकज में हुआ है। कुछ देर पहले अफगानिस्तान के वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि दो हमला आवर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मारे गए और उसके बाद हमला खत्म हुआ। एक हमला आवर ने गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया है।
हमलों की जिम्मेदारी किसी ने ली है भी?
हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल किया है और तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि इस हमले में उनका टारगेट यही जो हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी यूनिट है यही था, और इसमें तालिबान का कहना है कि मुतादद सिक्योरिटी अहलकार मारे गए हैं। लेकिन लोकल टीवी स्टेशन से जो फुटेज दिखाए, जो हालात हमने देखे, उसमें दिखाया जाता है कि ज्यादातर लोग जो मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं वो आम शहरी हैं, क्योंकि जिस इलाके में ये हमला हुआ है ये एक पॉपुलेटेड आम शहरियों का ज्यादातर इलाका है। इस इलाके में मुतादद गाड़ियों के मैकेनिक दुकानें और शॉप्स हैं, तो ज्यादातर लोग आम शहरी जो हैं वो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं।
साल 2014 में जब से नाटो और अमरीकी सेना अफगानिस्तान से हटना शुरू हुई है, उसके बाद से तालिबान फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सरकार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में उसने कुछ कहा?
बिल्कुल, अफगानिस्तान के वजारत दिफा और वजारत दाखिला के तर्जुमान की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाएं कि वो अभी भी बहुत सरगर्म हैं और ज्यादातर वायलेंस में उनका हाथ है। उनका कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान के शिमाली प्रांत कुंदूज में गुज़श्ता एक हफ्ते से जो ऑपरेशन शुरू हुई है, जो तालिबान ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए, वहाँ उनको शिकस्त हुई है। अब उस शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए उन्होंने ये हमला किया जिसमें ज्यादातर आम शहरी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। ये भी बताता चलूं कि तालिबान 2-3 हफ्ते पहले भी ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान में स्प्रिंग ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया है, और तालिबान का कहना है कि इस साल उनके ऑपरेशन के दायरा बहुत वसी होगा।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के रिहायशी इलाके में तालिबान का जोरदार हमला, 30 मौतें, जानकारी दे रहे थे बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। यहीं पर आपको बता दें कि हमारी तीसरी सभा यानी कि दिन भर का कार्यक्रम जो आप 11,675 किलोहर्ट्ज़ पर सुनते हैं, 22 अप्रैल से 11,775 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन सकेंगे। रुख भारत का करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इशरत जहां मुठभेड़ मामला फिर से राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर रहा है। वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पर आरोप लगे हैं कि बतौर गृहमंत्री उन्होंने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें इशरत को लश्कर का चरमपंथी बताया गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। बीजेपी ने इस पर अब सवाल उठाया है कि गृहमंत्री को ऐसा करने पर किसने मजबूर किया। वहीं कांग्रेस ने इसे फर्जी मुठभेड़ से मुद्दा भटकाने की कोशिश कहा है। पूरी रिपोर्ट के साथ दिव्या आर्य।
साल 2004, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत। गुजरात पुलिस का दावा कि इशरत जहां समेत ये चारों लश्कर ए तैयबा के सदस्य और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कोशिश की साजिश रचने वाले। इशरत जहां के परिवार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद मुठभेड़ की गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जाँच। केंद्र में यूपीए की सरकार। गृह मंत्रालय के हलफनामे के मुताबिक इशरत जहां और साथियों के चरमपंथी होने के पुख्ता सबूत नहीं। कोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया। साल 2016, केंद्र में भाजपा की सरकार, कांग्रेस विपक्ष में और आरोपों का फिर नया दौर। निशाने पर तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम। अब खबरों के एक टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने आरटीआई के जरिए निकलवाए दस्तावेजों की बुनियाद पर दावा किया है कि इशरत जहां पर दो हलफनामे दायर किए गए थे, पहले हलफनामे में उन्हें आतंकी करार दिया गया पर दूसरे में उनका नाम हटा दिया गया और तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने दोनों पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर मौजूदा गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा,
मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब को किसी तरीके से दबाव डाला होगा और एक आतंकवाद को आपने पूरा छूट दे दिया। इस तरह का काम तो आमतौर पर एक गृहमंत्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मामले में सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं कांग्रेस पार्टी और सबको सोचना चाहिए कि एक गृहमंत्री को इस तरह का एक काम करने में किसने मजबूर किया होगा।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अदालत में ये कहने पर कि इशरत जहां का संबंध चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा से नहीं था, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही है कि कांग्रेस का मकसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाना बनाना है। चंद दिनों पहले पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी के पिल्लई ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इस मामले में दूसरा हलफनामा गृहमंत्री पी चिदम्बरम के कहने पर बदला गया। उधर जांच में अब तक अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और गुजरात हाईकोर्ट की ओर से गठित विशेष जांच दल ने यही पाया कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। अब ताजा दावों के सामने कांग्रेस का आरोप है कि ये असल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता शकील अहमद,
मोदी जी और उनकी सरकार मीडिया में स्टोरी प्लांट करके डाइवर्ट कराना चाहती है अटेंशन को। मेन क्वेश्चन ये है कि जो इनकाउंटर था वो फेक है या जेन्यून था। कोर्ट्स ने उसको एस्टैब्लिश किया है कि वो फेक इनकाउंटर था। मोदी जी की सरकार और मोदी जी के लोग मीडिया में स्टोरीज प्लांट करके इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं।
साल 2013 में सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी शुरू की और कुल 8 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया। बाद में चार्जशीट भी दाखिल हुई। साल 2015 में जमानत मिलने के बाद कई अफसरों की सेवाएं बहाल कर दी गईं और पिछले हफ्ते मुठभेड़ मामले में अभियुक्त वरिष्ठ आईपीएस पीपी पांडे को गुजरात पुलिस का प्रभारी महानिदेशक भी बना दिया गया। आरोप प्रत्यारोपों के इसी दौर के बीच 26/11 मुंबई हमले के अभियुक्त डेविड हेडली ने कथित तौर पर एक बयान दिया कि इशरत जहां लश्कर ए तैयबा की ही सदस्य थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त सभी पुलिस अफसरों के खिलाफ मामला खत्म करने की अर्जी पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। दिव्या आर, बीबीसी दिल्ली।
इशरत इनकाउंटर मामले के विश्लेषण के लिए मैंने बात की इस प्रकरण पर शुरू से ही नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार प्रशांत दयाल से और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस क्या हमेशा पशुपेश में रही इस मामले को लेकर।
पूरे मामले में कांग्रेस पहले से ही कंफ्यूज पार्टी रही है। 2004 के बाद जब ये पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा और एफिडेविट करने को कहा गया केंद्र सरकार को, जब यूपीए सरकार केंद्र में थी, तो कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पाई कि उसको कौन सी दिशा में जाना है और क्या कहना है। कभी उन्होंने कहा कि इशरत टेररिस्ट थी, कभी कहा नहीं थी, तो ये पूरे मामले में कांग्रेस उलझी रही।
ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, एक दूसरे पर इस केस को लेकर हावी होने की कोशिश क्यों कर रही हैं?
अब ये दूसरे एनकाउंटर से ये थोड़ा सा केस अलग इसलिए है, पूरे हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा एनकाउंटर है जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को दोषित पाया गया है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि गुजरात के जो भी एनकाउंटर हुए हैं वो फेक है और ये सभी फेक एनकाउंटर सेंट्रल इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पे हुए हैं। तो अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ही अभियुक्त के कठेरे में खड़ा रहता है तो पूरी सरकार, भारत सरकार की रेपुटेशन दांव पे लगती है। इसलिए भाजपा कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार इस केस को सुलटाया जाए और इशरत टेररिस्ट थी ये बता के
नहीं सुलटाया जाए या उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए।
दो प्रकार से, एक तो पहले वो फायदा तो उठाना चाहती है लेकिन इसको सुलटाना इसलिए भी चाहती है कि अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंफॉर्मेशन ही गलत साबित होती है तो इसके पहले वाले सभी, सिर्फ गुजरात के नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी एनकाउंटर हुए उस पर सवाल या निशान खड़े हो सकते हैं।
इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखें तो मामले पर अभी भी जांच जारी है और अदालत में ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इनको हासिल क्या होने वाला है?
अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन अभी जो स्थिति आपकी यहाँ पे खड़ी है कि ये मामला इसलिए कोर्ट में चार्जशीट होने के बाद भी ये मामला नहीं चल पा रहा है क्योंकि इस केस में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो 5 अफसरान शामिल है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। अब जब तक भारत सरकार इन 3 लोगों को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन नहीं देती तब तक कोर्ट में भी ये कार्यवाही आगे नहीं हो सकती है।
इसी मामले के एक अधिकारी को जब प्रमोट कर दिया गया,
यही बात बहुत सूचक भी है कि गुजरात के डीजीपी पीसी ठाकुर का 4 दिन पहले तबादला हुआ और हाल में गुजरात के इंचार्ज डीजीपी के तौर पे पीपी पांडे को रखा गया है, जो खुद अभियुक्त है, जो चार्जशीटेड है और अभी जमानत पे छूटे हैं, जिनको जो 4 एनकाउंटर में शामिल है उनको गुजरात पुलिस का मुखिया बनाया गया है। तो ये बहुत सूचक बात है कि सरकार एनकाउंटर स्पेशलिस्टों के प्रति बहुत नरम रवैया अपनाना चाहती है।
पूरे प्रकरण के 2 मामले हैं। पहला तो ये कि इशरत जहां चरमपंथी थी या नहीं थी, एक अलग मामला है, इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन एनकाउंटर जो हुआ ये तो फेक है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है।
गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा जो तहकीकात पहले गुजरात पुलिस को और फिर सीबीआई को सौंपी गई थी, उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से यही जांच का आदेश दिया था कि इशरत और उसके 3 साथी गुजरात पुलिस की कस्टडी में थे या नहीं। तो जांच एजेंसी ने ये ही बताया हाईकोर्ट को, ये 4 मरने के पहले पुलिस की कस्टडी में थे, उसका मतलब कि ये फर्जी मुठभेड़ है। लेकिन भाजपा इसका फायदा भी लेना चाहती है और अपने लोगों को बचाना भी चाहती है, इसलिए भाजपा ये टेररिस्ट थी उस मुद्दे को उछाल के गुजरात पुलिस के अफसरान ने जो किया उसे सही ठहराने की कोशिश कर रही है।
प्रशांत दयाल इशरत के मामले का विश्लेषण कर रहे थे और बता रहे थे कि इस मामले की पेचीदगियां क्या हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्यों एक दूसरे से टकरा रहे हैं।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
यूं तो पूरा बुंदेलखंड ही सूखे की वजह से पानी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पर यह संकट कुछ ज्यादा ही है। इनमें से एक है झांसी जिले का बोडा गांव। महोबा जिले के कपसा गांव के लोग भी पानी की दोहरी मार झेल रहे हैं। पानी का जो संकट पूरे बुंदेलखंड में है वो तो है ही, पंपों से निकलने वाला पानी यहाँ पर इतना खारा है कि मुश्किल से ही कोई इसे पी सकता है। हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र आजकल बुंदेलखंड के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहाँ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनिए उन्हीं से।
दिन के 12 बज गए हैं और कड़ी धूप है यहाँ पे इस समय, जो झांसी जिले में बोड़ा गांव है। और यहाँ पे एक बाबा जी मुझे दिख रहे हैं जिनके हाथ में एक छोटी सी बाल्टी है, डिब्बा है और सामान अपना लिए हुए। कहाँ से आ रहे हैं बाबा जी आप?
हमारा साहब कुगापे से आ रहे हैं, गंज के किनारे हैं जी। नहाने गए थे साहब, यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है, तो वहीं से नहा के अपने सीधे अब खाना खाने के लिए आए।
झांसी जिले का बोड़ा गांव पूरे बुंदेलखंड में शायद सबसे ज्यादा पानी का संकट झेल रहा है। वैसे ये तो एक बानगी भर है, ये स्थिति पूरे बुंदेलखंड में जगह जगह दिख जाएगी। कोई साइकिल पर 8-10 डिब्बे टांगे हुए हैं, तो कुछ महिलाएं सिर पर 3-4 घड़े रखे हुए हैं, या फिर कुछ लोग बैलगाड़ी पर भी पानी से भरे बड़े बड़े ड्रम लादे हुए दिख जाएंगे।
साइकिलों से जाते हैं, डिब्बों से भर के लाते हैं, जैसे ये टंगा है, सारे गांव का लोग जाता है वहां पर इकट्ठा।
सारी औरतें 2 बजे रास्ते भरती हैं, वो गांव में कहीं भी पानी है नहीं, गांव के बाहर पानी है, वो सभी लोग वहीं जाते हैं। कम से कम 5-5 घंटे पानी आता है, 4 डिब्बा नंबर लग के पानी मिलता है यहाँ पे।
बोड़ा गाँव के भीतर ही ये एक हैंडपम्प है जिससे पानी निकालने के लिए कुछ महिलाएं संघर्ष कर रही है।
एक बार धार टूटने के बाद फिर ये कितनी देर बाद पानी आता है?
अब जो नहीं हमने चला उस इतिदार में आओ पानी।
ये इतने घड़े कितनी देर में भरेंगे आपके?
इतिबासन में तो दिन भर लग जाना, भरत भरत कम निकलत ना पानी।
तो जब दिन भर पानी भरती तो और काम कौन करता?
तो अब रख गए बासन, फिर चले गए, फिर भरन लगे अपने जब आ गए नंबर।
जानवरों के लिए भी इसी पानी से?
जानवर के लिए तो नदी को आ जाते हैं, मगर पीने के लिए तो यही है और खर्चा के लिए यही है पानी।
और नहाने धोने का?
सब यही में ले जाते हैं, नहा भी नदी जाते हैं।
हैंडपंप के किनारे अपनी बारी का इंतजार कर रही कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं। जिज्ञासा हुई कि जब इतना समय पानी लाने में निकालते होंगे तो पढ़ते कब होंगे?
पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं, रात को क्या करें, काम भी तो करना पड़ता है। पानी भर गया समझो कि सब कुछ हो गया।
सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पड़ने के समय में हम लोग पानी ढोने जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर से हम पानी साइकिलों में लाते हैं। बहने हमारी माताएं बहने हैं तो खोपड़ी में पानी लाती हैं सिर पर रख करके।
ये बताइए जब यहाँ स्कूल कितने हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं?
स्कूल सब 3 है स्कूल, वहाँ 3 स्कूलों में पढ़ाई होती है, पानी एक भी स्कूल में नहीं है।
कैसे पढ़ते इतनी देर, 5-6 घंटे बच्चे कैसे?
5-6 घंटे साहब हम लोग साहब वहाँ से पानी भरवा देते हैं प्रधान वगैरह, तो टैंकर से पानी टंकियों में भर लेते हैं तो बच्चों को दे पाते हैं मुश्किल में।
ये जो बच्चे साइकिल से पानी भरने जा रहे हैं ये फिर स्कूल कब जाते हैं?
वो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, उनका टाइम ही मतलब टाइम जो है खत्म हो जाता है उनका।
हाँ हाँ, तो सर ये है कि जो बच्चे हैं इनके माँ बाप सब लेगा दिल्ली, यहाँ पे कोई है नहीं, अब वो बेचारे पूरे दिन भरते हैं पानी, मतलब अभी स्कूल जाना भी उनका बंद हो गया पानी की वजह से। अब
स्कूलों में क्या हालत है पानी की? स्कूल में जो
किसी भी स्कूल में पानी नहीं है और बच्चे अपने घर से एक लेके आते हैं बोतल।
प्रधान जी यहाँ स्कूल है कोई जहाँ मिड डे मील बनता है?
हाँ हाँ बनता है।
तो जो मिड डे मील किस पानी से बनता है? बच्चे पानी, खाने के बाद पानी कहाँ से पाते हैं?
वहाँ से जो हमारे रसोईया है वो बाहर की लाती है, वो बच्चों को पानी पिलाते हैं स्कूल में, मिड डे मील भी बनता है।
बोड़ा गांव के प्रधान बाबूलाल कुशवाहा बताते हैं कि 7,000 की आबादी वाले इस गांव में 5 तालाब हैं, लेकिन सब सूखे पड़े हैं।
हमारे गाँव में 5 तालाब है, 5 तालाब सूखे पड़े, हेड पंप है लगभग 25 है, तो जहाँ मेरे से 2 चल रहे हैं गाँव में और 2 हमने अभी नए लगवाए, वे भी चल रही है और बाकी सब सूखे पड़े।
मीडिया में बुंदेलखंड के जल संकट की चर्चा आम है, जाहिर है प्रशासन के कानों में भी ये समस्या है। सूखे के संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज तो जारी किए गए और लोगों तक पहुंचाने का दावा भी किया गया, लेकिन लगता है कि जल संकट को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। स्थानीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर बताते हैं।
एक बुंदेलखंडी बोलता है कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए, मतलब पति मर जाए और पानी ना मरे। तो जब ये चीज़ हो जाए बुंदेलखंड में तो समझना चाहिए कि पानी की कितनी ज़रूरत है। केन सूख चुकी है, मंदाकिनी सूख चुकी है, खेतों में वीरानी है और इस सब के गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ हम हैं, सरकार नहीं है।
बुंदेलखंड खासकर बांदा चित्रकूट इलाके की पानी की समस्या जग जाहिर है। इस इलाके में 70 के दशक में उस समय की एशिया की सबसे बड़ी जल परियोजना पाठा पेयजल परियोजना नाम से शुरू की गई थी, जिसमें पाइपलाइन के जरिए मानिकपुर तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। जानकार बताते हैं कि इससे दूर दराज तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया गया, लेकिन बाद में बदइंतजामी के चलते इसका जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। उधर महोबा जिले के कपसा गांव के लोग पानी की दोहरी मार सह रहे हैं। पानी का जो संकट पूरे बुंदेलखंड में है वो तो यहाँ है ही, हैंडपंपों से निकलने वाला पानी इतना खारा है कि मुश्किल से ही कोई पी सकता है।
मीठा यहाँ नहीं है, खा रहे है सब नलन का खा रहा है। तो यहाँ कहूँ से आओ थे कदार पहाड़ी से जितना एक कसाणी आधी कसाणी जितना लाई पाए कहाँ आवत है पानी, मरती है गोरू बचेरू मराई सबको भैया हरा कहे का गाँव का वहाँ से ले आवत है कदार पहाड़िया वहाँ से ढो ढो मुड़न माँ।
गाँव वालों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें यही पानी पीना पड़ता है। जहाँ तक पशुओं की बात है तो लोगों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि पशुपालन तो लोगों ने जैसे बंद ही कर दिया है, क्योंकि पशु ज़्यादातर दूध के लिए पाले जाते हैं और इस समय उन्हें दूध की नहीं पानी की ज़्यादा ज़रूरत है।
सूखा भारत श्रृंखला की दूसरी कड़ी आप हमारी सुबह की सभा में दोबारा सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमरीका के न्यूयॉर्क में आज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स राष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार चुनने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। इस चुनाव को न्यूयॉर्क की जंग का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि बरसों के बाद किसी प्राइमरी मुकाबले में यहां ऐसी टक्कर देखने को मिल रही है। कौन है ये उम्मीदवार और कितना कड़ा मुकाबला उनके बीच है, सुनिए न्यूयॉर्क से BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स और रिपब्लिकन फ्रंट रनर डोनाल्ड ट्रंप तीनों ही खुद को न्यूयॉर्कर कहते हैं और अपने अपने तरीकों से ये साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्लिंटन सबवे ट्रेन पर सफर कर रही हैं, सैंडर्स ब्रुकलिन ब्रिज पर चहलकदमी करके लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो इसी इलाके में पैदा हुए थे, और ट्रंप शहर में फैले अपने कारोबार का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, क्वींस या फिर न्यूयॉर्क के दूर दराज के इलाके, उम्मीदवारों ने हर कोना छूने की कोशिश की है। ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड का लिटिल पाकिस्तान कहलाने वाला इलाका हिलरी के लिए मन बना चुका है। आखिर वजह क्या है?
क्योंकि लेडीज को वो प्रमोट करेंगी, वो क्योंकि लेडीज हैं, हमारे मसाइल को वो ज्यादा बेहतर समझेंगी, जो बात हम आदमी के साथ नहीं कर सकते तो हम उनको बेहतर तरीके से बता सकते।
पर्सनली मैं तो हिलरी के लिए वोट कर रहा हूं, लेकिन लोग दोनों तरफ दोनों साइड में हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जो भी उनके इश्यूज को हल कर सके, जो भी उनके मसाइल को हल कर सके, लाजमत है लोग उन्हीं को वोट करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिलरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
ट्रंप के बारे में क्या ख्याल
है? नो कमेंट्स।
हमारे सर्वाइवल का मसला है, हमारे बच्चों के सर्वाइवल का मसला है, तो यही वजह है कि इस वक्त हम हिलरी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हिलरी नहीं बन पाती हैं तो जो भी उम्मीदवार होगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, हम तो उसके लिए हाजिर हैं।
इनमें से कुछ को बर्नी सैंडर्स का नाम भी नहीं पता था, लेकिन शहर के अंदर सैंडर्स की रैलियों में क्लिंटन के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग जमा हुए हैं। वहीं शहर में हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लग रहे नारों को सुनकर लग सकता है कि वो यहां कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो अभी भी नंबर वन पर हैं, और उनके चाहने वालों में अब सिर्फ गोरे ईसाई अमरीकी नहीं, कई नए रंग शामिल होने लगे हैं।
ट्रंप को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ट्रंप जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेस्ट हो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फ्यूचर, और इंडिया यूएस रिलेशनशिप के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है अमंगस्ट ऑल द कैंडिडेट्स द बेस्ट कैंडिडेट।
ही इज नॉट ए रेसिस्ट, ये कोई रेसिज्म की बात नहीं करते हैं। अगर देखिए, इलीगल इमिग्रेशन को रोकना ये रेसिज्म नहीं है, और वैसे अगर आप देखते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेज करते हैं ही, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बोला है सब भी स्टूडेंट्स के लिए जो आते हैं अच्छे कॉलेज में जो एडमिशन लेगा उसको इंस्टेंट ग्रीन कार्ड देंगे।
इमिग्रेशन हो, सिक्योरिटी हो, या फिर नौकरियों में कटौतियों की बात हो, इस बार के सभी अहम मुद्दे न्यूयॉर्क के लिए भी अहम है, और उम्मीद की जा रही है कि वोटर भारी तादाद में घर से निकलेंगे। हिलरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप, तीनों का इस शहर से खास रिश्ता है, और यहाँ की हार और जीत तीनों के लिए अहम। क्लिंटन अगर यहाँ नहीं जीत पाती है तो उनकी उम्मीदवारी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा और सैंडर्स की गाड़ी आगे चल निकलेगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो आज करो या मरो का वक्त है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूयॉर्क।
और अब कार्यक्रम में खेल समाचारों की बात करते हैं। आदेश कुमार गुप्त मौजूद है। आदेश, क्या चल रहा है?
जी देखिए, थोड़ी ही देर में मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से IPL 9 के मुकाबले में होगा, और ताज़ा समाचार यह है कि कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। कोलकाता की टीम में कप्तान गौतम गंभीर के अलावा रोबिन उथप्पा, आंद्रे रसेल, मनीष पांडे और साकिब अल हसन जैसे बल्लेबाज हैं, तो गेंदबाजी में उमेश यादव, पीयूष चावला, सुनील नारायण और मोर्ने मोरकल हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की बल्लेबाजी की बात की जाए तो मुरली विजय, मनन वोहरा, शॉन मार्श, डेविड मिलर जो कि टीम के कप्तान, और ग्लेन मैक्सवेल, अब देखना है वो कितने कामयाब होते हैं रन बनाने में। इससे पहले पंजाब ने तीन मुकाबलों में से केवल एक में जीत हासिल की है, दो में हारे हैं। दूसरी तरफ कोलकाता ने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं, एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। गौतम गंभीर अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने तीन मैचों में 192 रन बनाए, तो आंद्रे रसेल जो उन्हीं की टीम के गेंदबाज हैं उन्होंने तीन मैचों में 5 विकेट लिए हैं। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके गेंदबाज जॉन हेस्टिक्स टखने में चोट के कारण IPL से बाहर हो गए। चोटिल होने के बाद हेस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं, अब वो फिट होकर आने वाले वेस्टइंडीज़ दौरे की तैयारी करना चाहते हैं। वहीं रियो में जारी ISSF निशानेबाजी विश्व कप में बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्वालिफिकेशन राउंड में 10वें और लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग 31वें स्थान पर रहे, जबकि चैन सिंह 52वें स्थान पर हैं। लेकिन 50 मीटर राइफल पिस्टल स्पर्धा में जीतू राय और प्रकाश नंजप्पा ने फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और जाने माने बल्लेबाज रहे इस्माम उलहक अब नई भूमिका में नजर आएंगे, वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन गए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता। और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बंगलुरु में कपड़ा उद्योग से जुड़े हजारों मजदूर और कर्मचारी पेंशन फंड निकालने के नियमों में हुए बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई बसों को आग भी लगा दी गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। जर्मनी में इस्लाम विरोधी आंदोलन पेगिडा के नेता लुत्ज बाखमान पर नस्लीय नफरत फैलाने के आरोपों में मुकदमा शुरू हुआ है। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। आरोप है कि चिदम्बरम ने इशरत जहां के बारे में दो अलग अलग हलफनामे दिए जिनमें से एक में उसे चरमपंथी बताया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मोजाम्बिक के लिए अनुदान पर रोक लगा दी है। ऐसा सरकार के 1 अरब से ज्यादा के कर्ज को छिपाने के बाद किया गया है। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम के अगले संस्करण यानी कि घटना चक्र में बेंगलोर में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत हुई है, उसकी खबर हम प्रमुखता से लेकर आएंगे। मोहनलाल शर्मा को हेमंत कुशवाहा के साथ विदा दें। नमस्कार।